مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، پر اپنے دوست کو ایک بھی ایسا موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ پروگرام صبح زندگی میں بہت بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح زندگی میں بہت بہت آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تہران اسٹوڈیوز سے 7:33 تہران ایران ٹائم کے مطابق، اور امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ خوبصورت سی صبح کا آغاز خدا تعالیٰ کے خوبصورت نام سے کر چکے ہوں گے، اور اسی طرح آپ کا پورا دن جو ہے وہ برکتوں سے، خوبصورتیوں سے، اور خوشیوں سے، اور مسکراہٹ سے بھرا رہے گا۔ اور بہت بہت خوش آمدید جی روبا۔
میں بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، امیدوار ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ خوبصورت سی صبح کا آغاز ہمارے خوبصورت سے پروگرام کے ساتھ کر چکے ہوں گے۔ امیدوار ہے، جس طرح کے خورم بھائی نے کہا، آج کا دن آپ کا نعمتوں سے اور برکتوں سے بھرا ہوا گزرے۔
جی بالکل، اور جو ہے بہرحال ہمارا ہفتے کا آج آخری دن ہے ہفتے کا، اور اس ہفتے میں ہم لوگوں نے موضوع کی بات کی، کس موضوع پہ؟ دلبر کے بات کی ہم نے، ذمہ داری کا احساس، ذمہ داری قبول کرنا، ذمہ داری کو انجام دینا، اس پہ جو ہے ہم نے پوری طرح زور لگا کے مختلف زاویوں سے اس موضوع پر بحث کی، اس موضوع پہ بات کی، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو ہماری جو یہ گفتگو ہے، یہ جو باتیں ہیں اور جس میں وہ خود بھی شریک تھے، پسند آئی ہوں گی۔ اور کل بھی جو ہے ہم لوگوں نے مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے اس موضوع پہ نتیجہ آور گفتگو کی۔ بہرحال پھر جو ہے یہاں پر ایک بار اور جو ہے ہم اس جو موضوع ہے اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے چلتے ہیں، اور اس زاویے سے اس پہ نظر ڈالیں گے کہ اگر اس دنیا میں، جیسے کہ ہم کم سے ہمارے ماہر جو مذہبی امور کے ماہر تھے ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہر کوئی ذمہ داری کا احساس کرنا شروع کر دے، اور ہر کوئی جو ہے اپنا کام جس پہ جو اس کو دیا گیا ہے اس کو انجام دینا شروع کر دے، تو دنیا جو ہے وہ ایک آئیڈیل وہ بن جائے گی،
جی سب کی مشکلات دور ہو سکتی ہیں،
ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے یہاں پر ایک بات جو کی، جو بڑی دلچسپ بات تھی، وہ یہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، دنیا میں امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، دنیا میں مضبوط طاقتور بھی ہیں، کمزور بھی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی میں اپنی ذمہ داری کو جو ہے انجام دے رہا ہوں، یہ میرا جو ساتھ کام دوست ہے، یا میرا جو بھائی ہے، میرا جو کوئی بھی رشتہ دار ہے میرے ساتھ کام جو کر رہا ہے، وہ کیوں نہیں ذمہ داری کا احساس کر رہا، وہ کیوں نہیں انجام دے رہا، کیونکہ وہ نہیں کام کر رہا میں بھی نہیں کروں گا، تو اس طرح جو ہے دنیا کا سسٹم وہ رک جائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو دیکھیں کہ آیا وہ کام کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، تو ہمیں جو ہے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو پورا کرنا۔
آپ کی بات کا میں خلاصہ یہاں چھوٹا سا کر دوں کہ ہر شخص اگر اپنے اوپر یہ ذمہ داری کو سمجھ لے، احساس اپنے اندر جگہ لے کہ میری یہ ذمہ داری ہے، میرے یہ فرائض ہیں، تو پھر ہم دوسروں کو نہ دیکھیں۔
نہیں، اصل میں ہوتا یہی ہے نا کہ انسان ایک اس کو پتا ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے، لیکن وہ اپنا کام کر رہا ہے، دوسروں کو دیکھتا ہے، اور وہ وہاں پر کہتا ہے کہ یار وہ جب نہیں کر رہا تو میں بھی نہیں کر رہا۔
بات ہوتی ہے نا، دیکھی ہو جاتی ہے یہاں پہ کہ اس نے نہیں کیا تو میں نہیں کروں گا۔ لیکن اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں، اس بات کی حساسیت کو، اس بات کی نازکی کو سمجھ لیں کہ ہر کوئی اپنے احساس سے ذمہ داری کو اپنے اندر جگانا شروع کر دے، تو کتنی یہ دنیا سنور جائے، کتنے مشکلات آسان ہو جائیں، اور کتنے ہمارے رشتے اور مضبوط ہو جائیں۔
آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ آپ لوگ ہمیں بتائیں، فیس بک، یوٹیوب، کال کر کے، میسج ریکارڈر کے ذریعے ہمیں بتائیں، اور ہم آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور اس وقفے میں دکھائیں گے کہ کیسے آپ جو ہے ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقفے میں آپ کو دکھائیں گے ہمارے فون نمبر، ای میل ایڈریس، ویب سائٹ، اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس آپ لوگوں کا فیس بک جو ہے میرے ہاتھ میں ہے، آپ جو کمنٹ کریں گے، جو بات کریں گے، وہ ابھی ایک ابھی जो है हम लोग ठीक है, मीलों हजारों मील जो है वो फासले पे हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप एक क्लिक करेंगे तो आपका कमेंट, आपका सवाल, आपका कोई भी मशवरा जो है वो यहां पर पहुंच जाएगा और डॉक्टर उस्मान खालिक को मैं यहां से देख सकता हूं और उनको, उनसे जो भी सवाल आप करना चाहेंगे फौरी तौर पे जो है हम वो सवाल जो है उनके आगे डाल देंगे और वो उसका जवाब आपको देंगे इंशाल्लाह। और तो क्या ख्याल है, मैंने बता दिया कि डॉक्टर साहब हमारे साथ
सरप्राइज खत्म कर दिया, नाजरीन को पता ही है कि हमारा
गड़बड़ हो गई है, तो जल्दी जल्दी बोलते बोलते जो है मैंने कहा वो
बस आपने बोल दिया, खराब हो गया।
एक और सरप्राइज भी है हमारे पास आज, दूसरे वाला सरप्राइज
बातें बताऊंगी,
ठीक है चलो वो बता।
ऐसे नाजरीन को बताती चलूं, जुमेरात का दिन है, खाने पीने का दिन है, मजे मजे की बातें करने का दिन है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या पिए और क्या ना पिए, जैसा खुर्रम भाई बता चुके हैं डॉक्टर उस्मान खालिक हमारे साथ होंगे, कुछ ही लम्हों में यहाँ तशरीफ ले आएंगे, तो देखते हैं कि आज उनके पास क्या है हमारे कहने के लिए। जी तो अब जाके ब्रेक लेना है हमने छोटा सा,
बिल्कुल जी एक वक्फा लेते हैं और उसके बाद जो है हमारे साथ जो होंगे डॉक्टर उस्मान खालिक स्टूडियो में मौजूद होंगे और तगज़िए से मुतालिक, गजाइत से मुतालिक जो है आज जो उन्होंने मौजू इंतखाब किया है उस पर वो बात करेंगे। तो चलते हैं एक छोटा सा वक्फा लेते हैं।
अस्सलामुअलैकुम, मैं आसिफ खान आप लोगों के सामने पेश खिदमत हूँ एक बार फिर से। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक मुसाफिर हूँ जो दिल्ली से जयपुर सिर्फ आप ही के लिए आया है, जयपुर का जायका आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। मैंने जयपुर के मुख्तलिफ इलाकों से और इमारतों से जो है मैं रूबरू हुआ और आप तक जो है उसका जायका मैंने पहुँचाया। अभी मैं हूँ आमेर फोर्ट में, आमेर के किले में, जो कहते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा फोर्ट है। हम लोगों ने पीछे से जो है उसको शूट करना शुरू किया था और ये पूरा अभी भी जो है ख़त्म नहीं हुआ है। मैं सामने वो मैं दिखाना चाहूँगा कि आगे तक मेन पैलेस, मेन जो महल है वो है, वो सारा का सारा। इसकी तारीख के बारे में तो खैर ज़्यादा अगर हम पीछे जाएं तो इसको राजा जयसिंह ने और भारमल ने इसको बनवाया था 15वीं सदी के आसपास। इसकी कहानी है मुगलों से, मुगलों का और इस किले का एक ख़ास रिश्ता है। जब बाबर हिंदुस्तान आया तो बहुत टाइम तक जो है वो सल्तनत को नहीं संभाल पाया, उसके बाद उसने जो है अपने बेटे हुमायूं को जो है सल्तनत की बागडोर दी, बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से जो है हुमायूं भी इस काबिल नहीं निकला क्योंकि उससे तलवार से ज़्यादा जो है कलम से अपने प्यार था। और उसने जो है, जब कहते हैं कि जब कलम एक बार पकड़ लेते हैं हाँ तो जो है तलवार जो है बहुत मुश्किल से उठाते हैं, बट फिर भी जो है वो लड़ा शेरशाह सूरी से और उसने अपनी सल्तनत को वापस लिया। उसके बाद जो है हुमायूं ने जो है शेरशाह सूरी से जंग की और उसके बाद जो है शिकस्त खाता हुआ हुमायूं जो है सिंध के पथरीले रेगिस्तानों से होता हुआ ईरान पहुंचा, ईरान से जो है एक भारी लाव लश्कर लेके जो है उसने फिर से जो है दिल्ली पर जो है हमला कर दिया। हमला करने के बाद जो है उसने जो है दिल्ली की सल्तनत को फिर से अपने हाथों में ले तो लिया, पर बहुत ज़्यादा दिन तक जो है वो दिल्ली में जो है कायम नहीं रह पाया। खुदा ने की मंजूरी थी कि जो है कुछ ही महीनों बाद जो है उसका इंतकाल हो गया शेर मंडल से जो है गिरने के बाद। उसके बाद उसका फौरन, उसके मरने के फौरन बाद जो है उसका बेटा जो बहुत नाबालिग था अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है जिससे 14 साल का था, बैरम खान, बैरम बेग खान ने जो है उसको तख्त पे बैठा दिया। जब वो तख्त नशीन हुआ तो उसके बाद जो है उस बहुत सारी मुश्किलों का उसको जो है सामना करना पड़ा। उसे जो है राजपूतों से, बहुत सारे लोगों से उसे जंग करनी पड़ी, बट उसके साथ साथ उसको जो है राजपूतों के साथ जंग करने के साथ साथ उसे बहुत सारे राजपूतों के साथ जो है संधि करनी पड़ी, उनमें से ये किला राजा भारमल जो है उनसे संधि की उसने, उसकी एक रवायत थी कि उसने जो है राजा भारमल की बेटी जोधा से जो है ब्याह रचाया, क्योंकि अजमेर जो सूबा था, अजमेर शरीफ जो एक सूबा था वो इसी रियासत के अंडर में आता था, और जब भी जो है अजमेर जाने वाले जायरीन जो है उस रास्ते से निकलते थे तो राजपूत जो है उनके ऊपर हमला कर देते थे, इसलिए जो है उसने उसको जोधा से शादी की और जो है इस किले से जो है अपना एक रिश्ता कायम किया। तो ये खास रिश्ता है मुगलों का इस किले के साथ। अंदर जा रहे हैं, फिर आमेर फोर्ट के अंदर, जैसा कि हम आप पीछे से देख रहे थे उसके सामने से कि उसके नदी के किनारे जो मतलब वो जो झील थी जहाँ पानी था उसके किनारे खड़े हुए थे हम लोग और वहाँ से इसका नज़ारा ले रहे थे, उसका लुत्फ ले रहे थे। बट अब हम लोग जो है फाइनली आखिरकार हम लोग अब अंदर जा रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं इसको कि वहाँ शाही खानदान कभी रहता होगा और वहाँ से जो है वो नज़रें डालता होगा नीचे की तरफ। और इस रास्ते में ये जो गेट है बड़ा इधर की तरफ, ये जो गेट है बड़ा, यहाँ से जो है शाही खानदान अंदर जाता होगा कभी। तो हम भी ऐसा ही वो रुख अपनाएंगे जहाँ से शाही खानदान अंदर जाता होगा और अंदर चलते हैं हम लोग। चलिए मेरे साथ और देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा है।
नाज़रीन मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आसिफ के साथ आपने एक बार फिर हिंदुस्तान की एक तारीखी इमारत की सैर की। उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम जो है, ये रिपोर्ट जो है पसंद आई होगी। चलते हैं रुबाब के पास जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान खालिक और मौजू है हमारा गजाइयत या तक़ज़िया।
बहुत शुक्रिया खुर्रम। नाज़रीन मैं बताती चलूँ, आज का हमारा मौजू बड़ा मज़े का मौजू है, मशरूबात। कैसी मशरूबात, कौन सी मशरूबात, क्यों लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए, हम आज डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम,
क्या हाल है डॉक्टर साहब?
ठीक ठाक।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ तशरीफ लाए डॉक्टर साहब। एक तो डॉक्टर साहब हमारा मौजू आज का है मशरूबात। आपसे पहले यही पूछना चाहूँगी कि इनकी इकसाम क्या है, क्यों लेनी चाहिए, कहाँ लेनी चाहिए।
हमारे पिछले प्रोग्राम का मौजू हाइड्रेशन मीन्स जिस्म में पानी का तनासुब और उसकी
कमी की वजह से जो मुश्किलें आ जाती हैं,
अहमियत के ऊपर थोड़ी सी बातचीत हमने की। मशरूबात बुनियादी तौर पर एक तरीके से या दूसरे तरीके से आपके जिस्म में पानी ही की कमी जो है वो पूरी करते हैं।
सही।
और उसमें जो सबसे अहम तरीन मशरूब आता है और जो सबसे सस्ता और हर एक की ऑलमोस्ट हर एक की पहुँच में वो पानी है।
मैं एक बात यहाँ पे इजाफा करती चलूँ, हम लोग बचपन में कहते थे कुदरत कोला,
कुदरत कोला
पानी को। जी जी जी
सही, बिलाशुबा कुदरत कोला ही है।
सही।
वो अलग बात है, इसमें कोला नामी कोई शय नहीं है मौजूद।
जी
तो पानी एक ऐसी चीज है जिसको हम मतलब कि सुबह से शाम पीते हैं, हर एक को पता, हर एक पीता है। लेकिन पानी भी आजकल जो है वो कमर्शलाइज होना शुरू हो गया है। ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर मैं काफ़ी अरसे सोच रहा था कि एक पूरा प्रोग्राम जो है वो इसके ऊपर किया जाए। आज भी मैं पानी के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कुछ बुनियादी सी बातें और बाकी मशरूबात की तरफ जो है वो आ जाऊँगा इस चीज़ पर। कुछ मीडिया ने इस मामले में हमारी सोच अपने मफाद की खातिर दूसरी तरफ मोड़ दिया है और उसमें हमारे मुख्तलिफ किस्म की गवर्नमेंट्स के हेल्थ सेक्टर्स भी मौजूद हैं जो कि पॉलिसीज जब बनाते हैं तो उसमें न्यूट्रिशनिस्ट हज़रात या जो आम तौर पर ग़िज़ा वगैरह के मुतालिक मालूमात रखते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये लोग अभी वैसे भी दुनिया में काफ़ी कम है। तो उन वो हज़रात मौजूद होते हैं, डॉक्टर्स हो गए, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हो गए, वो इन चीज़ों को उसमें डालते हैं जिनका उन्हें खुद भी इल्म नहीं होता।
सही।
मिसाल के तौर पर आजकल एक आम ट्रेंड भी बन चुका है और मीडिया के ऊपर ये चीज़ भी पेश की जाती है कि भाई मिनरल वाटर जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। मिनरल वाटर अच्छा है या नहीं है ये तो हम किसी और अगले प्रोग्राम में जिसमें मैं पूरे पानी के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करूंगा उसमें मैं तफसील में बताऊंगा कि इसके पीछे बुनियादी कहानी क्या है। लेकिन यह है कि जहां तक मिनरल्स या मादनियात की बात करते हैं तो कुदरती पानी आपको जहां से भी मिलता है उसके अंदर कुदरती तौर पर मादनियात मौजूद होती हैं। तो ये जस्ट एक लेबल लगा दिया और उसको कमर्शलाइज करने के लिए एक चीज, जैसा कि आपको पता हो कि मीडिया और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में यही कुछ होता है कि आप एक चीज को फैंसी बनाकर जो है वो पेश करते हैं।
ये भी होती है कि इनको बहुत जल्द लोग इसको फौरन अपना लेते हैं,
बिल्कुल,
क्योंकि इतनी फैंसी एडवर्टाइजमेंट होती है या इतना इसके बारे में तारीफ की जाती है कि लोग फौरन उसी तरफ खींचे चले जाते हैं।
बिल्कुल। पानी में बुनियादी तौर पर यह चीज है कि पानी आप घर में नलके का पानी पीते हैं, अमूमी तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक में भी, जैसे हमारे ममालिक हो गए, इनके अंदर नल का पानी उमूमी तौर पर साफ होता है, उसके अंदर कोई इतने जरासीम वगैरह नहीं होते। और अगर उसके अंदर थोड़े बहुत जरासीम मौजूद भी हों तो हमारी जिस्म के अंदर इस किस्म की मुदाफियाती कुवतें मौजूद होती हैं कि वो उनका आराम से जो है वो मुकाबला कर लेती हैं। ये खामखा जो है वो एक चीज़ बताई जाती है कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए और ये इस किस्म की चीज़ें,
नहीं कहते फिटकरी डाला करो, ये चीज़ें सुनी है जो पुराने जमाने
जी
में
जी
सही, तो ये सही नहीं है।
वो भी सही है लेकिन वो किसी और मकसद के लिए।
अच्छा,
और वो नहाने के पानी, स्विमिंग तैराकी के पानी के अंदर भी क्लोरीन डाली जाती है, वो अलग चीजें हैं। यहाँ पर पीने के पानी की बात हो रही है, उसमें कुछ चीजें आती हैं लेकिन वो जो हमारे यहाँ पीने का पानी मौजूद है वो उमूमी तौर पर सेहत के लिए मुजर नहीं होता।
अच्छा,
नंबर दो, जो हमारे नल का पानी आता है उसके अंदर एक मिनरल यानी मैंगनीज, ये उसका उसके हसूल का एक नहायत उम्दा जरिया है जो कि आपको बाकी फलों सब्जियों या बाकी खुराक के अंदर जो है वो इतनी मुनासिब मकदार में नहीं मिलता।
सही, सही।
तो ये एक हमारे जहन में एक हेवला सा बनाया गया है कि ये मुजर चीज है, ये वो इस तरह की जो है वो कोई चीज नहीं है। तो पानी के मुतालिक फिर इंशाल्लाह
आगे
बात करेंगे, दूसरे मशरूबात के ऊपर बात कर लें और उसके अंदर फिर सबसे हमारा जो फेवरेट तीन लोगों का आजकल मशरूब है वो है कोक्स।
सही,
उसमें कोक्स की दो इकसाम आ जाती हैं, एक है सिंपल कोक्स और दूसरी जो है वो डाइट कोक्स कहलाती हैं। सिंपल कोक्स, आम कोक्स, ये मुख्तलिफ कंपनीज मौजूद हैं, कुछ जो है वो इंटरनेशनल हैं, कुछ आपके लोकल सतह पर जो है वो कंपनीज काम करती हैं। उनके अंदर बुनियादी तौर पर फॉर्मूला जो है वो उनका एक ही होता है, वो कार्बोनेट करती
बस
है,
तो रंग और मजे का फर्क
जी,
हो
जी, जी। लेकिन ये है कि इसके फायदे मुझे तो समझ नहीं आया आज तक, नुकसानात ही नुकसानात हैं। कभी कभार ले लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह है कि अगर इस चीज को आदत बना लिया जाए तो ये एक इंतहाई बुरी आदत है और इसके इंतहाई मुझे
मेरे ख्याल से, मैं अगर यहाँ पे नजर अपना देती चलूँ, एक एडिक्शन की तरह है, जिसने पी लिया मतलब वो हर रोज पीने लगे तो छोड़ ही नहीं पाते हैं, ये बड़ा मसला है।
ये एडिक्शन होती है और मैंने अपनी जिंदगी में बजाते खुद कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने शुरू में इस आदत को बजरी एज ए शौक अपनाया,
सही,
और आहिस्ता आहिस्ता उनकी आदत ये होगी कि उन्होंने पानी पीना बिल्कुल छोड़ दिया और पानी के बजाय वो लोग ये चीज पीते थे।
सही।
आम एक ख्याल ये भी तसव्वुर किया जाता है कि ये पानी की जगह एज अ सब्स्टिट्यूट इसको इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये भी पानी से बना है और आपके पानी की कमी पूरी करता है। असल में ये चीज बिल्कुल उलट है। कोक्स वगैरह पीने से आपके जिस्म में बुनियादी तौर पर पानी की कमी होती है और ये आपके पेशाब का इखराज जो है वो ज्यादा करती हैं।
अच्छा।
इसके अलावा कोक्स वगैरह ज्यादा पीने से दांतों के अंदर, चूंकि एक तो इसके अंदर मिठास बहुत ज्यादा होती है,
सही,
बार बार मीठा दांतों के थ्रू गुजरे तो उसके अंदर कीड़ा लगने के जो है वो ज्यादा
सही चांसेस बढ़
चांसेस
जाते हैं,
होते हैं। और इसके अलावा दांतों के खराब होने या दांतों के खोखले होने का भी डर होता है।
सही।
दूसरी तरफ आते हैं डाइट कोक्स। डाइट कोक्स आमतौर पर डायबिटीज और इस किस्म के अमराज के लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके ख्याल में ये होता है कि इसके अंदर चीनी कम है या ये कम मिठास वाली है, और वो लगती भी कम मिठास वाली है, लेकिन मजे की बात यह कि उसके अंदर इस कोक से जो सिंपल कोक है उससे कहीं गुना ज्यादा चीनी मौजूद होती है, और उसके अंदर असल चीनी नहीं बल्कि एक सिंथेटिक शुगर डाली जाती है, अमूमी तौर पर उसको एस्पार्टेम कहते हैं, और ये बनाने में भी बहुत सस्ती होती है और इसकी मिठास आम चीनी से कहीं गुना ज्यादा होती है, लिहाजा कंपनीज जितनी भी हैं वो इस चीनी को इस्तेमाल करती हैं और मिठास चूंकि इनकी ज्यादा होती है लिहाजा वो ज्यादा पैसे बचा पाती हैं।
अच्छा।
लेकिन इसके मुजर असरात आप एक लिस्ट बनाते चले जाएं और वो लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेती। आज तक जो इसकी इससे मुतल्लिक बीमारियां जिसके साथ इसको एसोसिएट किया जा चुका है वो तकरीबन 73 बीमारियां हैं, जिसके अंदर से 23 बीमारियां नफसियाती बीमारियां हैं और बाकी तमाम बीमारियां आपके आम जिस्मानी बीमारी, सिर्फ एक ये चीज एस्पार्टेम डाइट कोक्स के अंदर ये पाई जाती है। इसके अलावा डाइट कोक्स के नुकसानात ये हैं कि डाइट कोक्स आम कोक्स की निस्बत ज्यादा एडिक्टिव है, जो लोग डाइट कोक्स फैशन में आकर पीते हैं, अक्सर ये देखा गया है कि डायबिटीज वगैरह के मरीज ना भी हों वो भी इनको डाइट कोक्स का जो है वो इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। इनके अंदर कुछ जो इनके अंदर चीनी इस्तेमाल होती है, सिंथेटिक शुगर जो है, वो कुछ इस किस्म की प्रोपेंसिटी रखती है कि आपके टेस्ट बड्स जो हैं जिनके जरिए आप जायका चखते हैं जुबान के ऊपर जो आपके मौजूद होते हैं, उनका जायका चखने की सलाहियत दूसरे जायकों के लिए कम होती चली जाती है और वो सिर्फ इस चीनी को चीनी मानते हैं। फिर
अच्छा
आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरीके से इवॉल्व हो जाते हैं,
वो इसकी पहचान रखते हैं।
बिल्कुल
ठीक ठीक
वो आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ इसकी पहचान करना शुरू हो जाते हैं और बाकी तमाम चीनी की पहचान खत्म हो जाती है। लिहाजा डाइट को कसरत से पीने वाले अफराद, उनको बाकी फिर किसी भी चीज में मिठास नहीं लगती और वो उस मिठास का एहसास लेने के लिए वो चीनी ज्यादा भी डालते हैं या फिर यह है कि वो डाइट कोक का भी इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना शुरू हो जाते हैं। और ये आपके मतलब कि ये चीज फिर परमानेंट लेवल पर हो जाती है कि आपको बाकी जो दूसरे जायके होते हैं उनसे आपकी जुबान जो है वो उनको महसूस करने से आरी हो जाती है।
सही ठीक। तो यहाँ पे तो हमने ये बात की कोक तक की, अब मशरूबात की, ठीक है, हम कोक के अलावा बात करते हैं, बात हो गई कैसे बोले कुदरती तौर पर फलों की जो हम जूसेस ले रहे हैं, उनकी अहमियत को हम पानी की अहमियत से मैच कर सकते हैं या नहीं, या उनकी अहमियत हमारी जिंदगी में कितनी है, दिन में कितनी बार पीना चाहिए। लेकिन इस आपका जो मेरा सवाल है इसका हम जवाब लेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद, मेरे ख्याल से वक्फा ही लेना है हमने। जी
बिल्कुल, एक खूबसूरत सा वक्फा अलबत्ल लेना है और इस वक्फे में जो है हम आप लोगों को खूबसूरत तस्वीर और खूबसूरत सा म्यूजिक सुनाएंगे कि थोड़ा सा जो है फ्रेश हो जाएं आप लोग और उस पर दोबारा जो है आ जाएंगे हम अपनी गुफ्तगू की तरफ जो कि है गजाइयत। जी कहा जाता है कि खुश शिराज व वस्फ बीमे सालस, ये जो है शिराजी जो एक्सेंट है शिराजी जबान में जो है का इसका मतलब ये बनता है कि शिराज को आप किसी और जगह से कंपेयर नहीं कर सकते। जी अब ये जो है आपने तस्वीर और जो खास तौर पे मौसीकी जो म्यूजिक पीछे बैकग्राउंड में आ रहा था मुलायजा फरमाया, ये दोनों जो है शिराज से थी और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। भारत शिराज जो है वाकई ईरान की एक बहुत खूबसूरत जगह है, देखने वाली जगह है और वहां के लोगों के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत अच्छे और बहुत जो है क्या कहते हैं बड़े जो है फ्रेंडली किस्म के लोग
लो होते हैं। मैं यहाँ पे एक और बात बता चलूँ नाजुन, अगर आप शिराज गए फालूदा शिराजी बहुत मशहूर है।
फालूदा होता क्या ये तो बताएं थोड़ा सा।
फालूदा आप सबको पता है क्या होता
है? अच्छा वही वाला फालूदा है जो हम लोग भी खाते हैं।
हमारे फालूदे जैसा सच नहीं होता, इसमें आइसक्रीम वगैरह नहीं होती, इसमें कुदरती तौर पर गुलाब और ये चीजें इसमें ऐड होती हैं और कुछ मैक्रोनी टाइप की चीजें इसमें होती हैं, जिसको बोलते हैं मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं उसको।
बिल्कुल बारह चीनी उसमें इस्तेमाल की जाती है, उसमें थोड़ी सी आइसक्रीम थोड़ा मिलता जुलता ही है हमारे साथ।
होती है इसमें
नहीं, वो एक चीज तो होती ना ठंडी सी भी उसके अंदर डाली हुई होती है,
बाल होते हैं पता
गोला होता है बर्फ को आइसक्रीम टाइप की चीज होती है,
थोड़ा गोला गंडे जैसी चीज होती है उसमें। जी आपको इंशाल्लाह पसंद है कि जरूर खाइएगा वो, जो कि बात खाने पीने की वजह से मैंने कहीं बताती चलूं नाज़रीन को। जी फौरन चलते हैं मौजू की तरफ। डॉक्टर साहब एक बात, एनर्जी और स्पोर्ट्स के अंदर देखा गया डिहाइड्रेशन बहुत होती है, लोग बार बार पानी या नहीं, पहले हम वाले सवाल का जवाब पूछते हैं अपना जो मैंने आपसे पूछा था जी, कि फलों की जो कुदरती जो हम बनाते हैं घर के अंदर, जैसा माल्टे का जूस हो गया, केले का हो गया, जिसका भी, तो उसकी अहमियत के पानी को वो पानी की जगह ले सकता है या उसकी अहमियत दिन में आप कितना बोलेंगे ग्लास हमें पीना चाहिए वो कैसा है?
ये थोड़ा सा जिक्र मैंने पिछले प्रोग्राम में भी किया था कि अगर आपने फलों का इस्तेमाल करना हो तो वो उनका बेहतरीन इस्तेमाल और उनसे आप मैक्सिमम गजाइत जो है उनको कुदरती तौर पर इस्तेमाल करके ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर सेब है, सेब को आप छिलके समेत खाएं, माल्टा है, माल्टे को वैसे आप खाएं। और अब उसमें यह है कि आप जूस बनाते हैं तो मिसाल के तौर पर आप सेब का अगर जूस बनाते हैं तो आप छिलका उसका उतार कर फेंक देते हैं जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं,
आयरन वगैरह भरे हुए होते हैं।
बिल्कुल और जब आप उसको मिक्स करते हैं, जो उसको एक इंटेंसली ग्राइंड करते हैं, तो उसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं डायट्री फाइबर्स जो कि एक बहुत ही मुफीद है, वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और उनका प्लस बेनिफिट भी आपको नहीं आता,
नहीं मिलता।
इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर जूस आपने पीना भी हो, वैसे तो मैं इस चीज को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आपने जूस कुदरती पीना भी हो, एक तसव्वुर भी लोगों के जहन में बना हुआ है कि यही एक सेहतमंदाना जिंदगी का एक निशान है, तो आधे क्लास से ज्यादा एक दिन में ना पिए।
अच्छा एक बात और, हमें देखे बाहर डब्बों में जूस मिलते हैं 100% प्योर नेचुरल है कुदरती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, वो सही है या वो भी नहीं?
आप कोई भी जूस उठाकर पिए जो के कहे कि 100% कुदरती है,
जी जी,
क्या आपको लगता है कि वो 100%
वो नहीं होता? जी
वो नहीं होता,
सही। तो फिर यानी उसका भी कोई फायदा नहीं है यानी
उसमें? बस ये होता है कि आम जूसेस की निस्बत उसके अंदर जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वगैरह डाले जाते हैं वो कम होते हैं, लेकिन बहरहाल उसके अंदर मसनूईयत अपनी जगह मौजूद।
अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाहूंगी, मेरे जहन में यार था, आप यानी बोलेंगे कोक बेहतर है या उसके बदले में इसको आप वो करेंगे, कौन सा इन दोनों में ज्यादा जरर देता है, कॉर्पोरेट यानी जूसेस या कोक को आप वो करेंगे?
जूसेस में अगर आप जो है वो नेचुरल खुद बनाते हैं तो ऑफ कोर्स कोक की निस्बत वो कहीं ज्यादा बेहतर
है। ठीक है, अच्छा, अब मेरा एक और सवाल यही था कि मैंने बताया जैसा कि डिहाइड्रेशन वगैरह, जब आप वर्जिश कर रहे हैं, बहुत से वर्जिशकार अफराद होते हैं वो वर्जिश कर रहे हैं या स्पोर्ट्स में है या बच्चे, उनके लिए मशरूबात वगैरह की आप कितनी बताएंगे, क्या अहमियत है उनके लिए?
ये हमारे यहाँ एक और फैशन भी चला है एनर्जी ड्रिंक या स्पोर्ट्स ड्रिंक का।
जी जी,
ये चीजें हमें जान लेनी चाहिए कि फैशन के तौर पर हम लोगों ने उठा तो ली इस चीज को, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है। ये ज्यादातर उन अफराद के लिए है जो कि बहुत इंटेंस किस्म की एक्सरसाइजेस करते हैं, आम एक्सरसाइज करने वाला बंदा भी नहीं, जो 20-30 मिनट जॉगिंग करता है सिंपल सी या आम सी वर्जिश की 20-30 मिनट हल्की फुल्की, ये उन लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कि प्रोफेशनल एथलीट होते हैं।
अच्छा,
जिनका एक्सरसाइज कर करके वो पसीने में शराबूर हो जाते हैं।
ठीक ठीक।
और चूंकि उन्हें सारा दिन उनका काम यही होता है, मश्क पे मश्क करना, मश्क पे मश्क करना, और चूंकि वो उन्होंने इस चीज को प्रोफेशनली लेना होता है,
उनका मशगला यही है।
बिल्कुल
सही।
तो उसमें ये होता है कि वो चूंकि उनके पास वक्त की कमी होती है और वो इन तमाम पसीने के थ्रू जो आपके मिनरल्स वगैरह या पानी जो लूज हुआ होता है वो उसको पूरा करने के लिए उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो साइड पर बैठकर खाना शुरू करें चीजें, फिर वेट करें कि वो चीजें बॉडी में बैलेंस दोबारा क्रिएट करेंगी, इसलिए वो स्पोर्ट्स ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी वो खुद से नहीं करते। टीम्स के अंदर आपको मालूम होगा स्पोर्ट्स ट्रेनर होते हैं, वहां पर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं,
जी जी।
वो उनकी बॉडी की जरूरियात के मुताबिक, उनके खेल की जरूरियात के मुताबिक और उन्होंने जो मश्क की होती है उसके मुताबिक उनको जो जरूरत उनको होती है उसके मुताबिक और स्पेसिफिक किस्म के स्पोर्ट्स या एनर्जी ड्रिंक जो है वो मुहैया करते हैं।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया यहाँ तक की गुफ्तगू के लिए, इंशाल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं खुर्रम भाई के पास।
मैं जो मशरूबात पे बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ी सी चर्बी पे बात करूंगा।
बड़ी खूबसूरत तस्वीरें लेके आए,
तस्वीरें ही होती हैं असल में, जो बात जो है वो तो डॉक्टर साहब ने करनी होती है, हमने तस्वीरें दिखानी होती है यहाँ पर अपने नाज़रीन को, और ये तस्वीर जो है तब्दील करने का मेरा बिल्कुल जी नहीं चाह रहा, क्या करें।
सुबह से तस्वीर को देख रही, बड़ी खूबसूरत तस्वीर
मैंने लगाई इसलिए थी सुबह से, यहाँ पर ये मौजूद थी। आज मैं आपसे शुरू में पहली जो आपके लिए जो मजे की बात लेके आया हूँ वो ये है कि फलों और सब्जियों में जो चर्बी की मकदार होती है, मैं सिर्फ जो है कुछ जो खास खास चीजें हैं उनमें बता दूंगा ताकि उस हिसाब से, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं शायद कि फलों और सब्जियों में चर्बी होती नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? क्योंकि आप जो मैंने ये पढ़ा है इसमें तो ये लिखा हुआ है कि बड़ी माशाल्लाह कुछ चीजों में बड़ी हट्टी कट्टी चर्बी होती है,
कुछ फल हैं जिसमें चर्बी की थोड़ी मिकदार है, लेकिन उमूमी तौर पर फलों और सब्जियों में फैट्स कॉन्टेंट्स जीरो होते हैं।
ठीक है, सही। बहरहाल जो चीजें अभी मैं कुछ चीजों में बताऊंगा, बहरहाल जो है तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा मजे मजे की, और उसमें जो है चर्बी की मिकदारें वगैरह की बात करेंगे। हर एक और जो है बड़ी खूबसूरत तस्वीर जो है आपकी खिदमत में पेश कर दी है। कहते हैं कि गोभी जो है बंद गोभी उसके बारे में कहते हैं उसके अंदर 0.5 ग्राम चर्बी होती है एक जो बंद। अब ये मैं साथ साथ आपको बताते चलूं कि जो मिकदार है, आप जारी बताया, अगर एक बंद गोभी को आप एक कीवी से कंपेयर करेंगे तो उसमें खुद जो है उसकी मिकदार वाइज भी जो है उसमें फर्क है, तो ये चीज इस चीज का ख्याल रखना बहरहाल जरूरी है। वो बंद गोभी के बारे में कहा जाता है उसमें 0.5 ग्राम जो है हमारे पास चर्बी मौजूद है, उसके अलावा माल्टे में भी 0.5 ग्राम चर्बी है, उसके अलावा कहा जाता है कि जो चावल और मटर हैं उनके अंदर भी 0.5 ग्राम चर्बी है, केला जो होता है उसके अंदर 1 ग्राम चर्बी मौजूद है, उसके अलावा जो हम टोस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो है कहा जाता है कि यहाँ पर लिखा है 1.5 ग्राम चर्बी जो है मौजूद है, जैतून जो है उनके अंदर कहा जाता है 2.5 ग्राम चर्बी मौजूद होती है, लोबिया जो इस्तेमाल करते हैं जो दाल है हमारी लोबिया उसके बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर 4 ग्राम है, और जब जो जिनमें सबसे ज्यादा चर्बी की मिकदार मौजूद है उसमें बादाम और जो है क्या होता है मूंगफली जो होती है,
ड्राई फ्रूट्स भी आ जाएंगे
जी। अब ड्राई फ्रूट्स के अंदर बादाम और मूंगफली में कहा जाता है कि 14 ग्राम जो चर्बी है उसी मिकदार मौजूद है। आप लोगों के इसके बारे में कोई नेक ख्याल है तो आप लोग दे सकते हैं।
जी थोड़ी सी चीजें जी जरूर करना चाहूंगा।
जी जी,
जो आपने कुछ फलों और सब्जियों का नाम लिया कुछ और कुछ
ड्राई फ्रूट्स वगैरह
मिक्स कर दी ड्राई फ्रूट्स वगैरह के साथ, उसमें हम थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन कर लें कि कुछ फलों और सब्जियों में वाकई में थोड़ी मिकदार में इंतहाई कम मिकदार में फैट मौजूद होते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनली जब हम इसको काउंट करते हैं तो हम इसको एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी में आपके निजाम इन्हजाम का जो जितना अमल चल रहा होता है
जी जी,
उसके अंदर ये फैट जो है वो इस्तेमाल हो जाते हैं।
अच्छा, ये तो इसका मतलब ये कि अगर आप कोई बंदा जो है बादाम खा रहा है तो वो मोटा नहीं होगा उससे?
नहीं नहीं, मैं सब्जियों और फलों की बात कर रहा
हूं। अच्छा, सब्जियों की बात कर लें, यानी अगर आप कह रहे हैं कि वो उसमें इस्तेमाल हो जाती है, इसका मतलब है वो जो है आपको मोटापे में कोई असर नहीं लाएंगे?
नहीं,
ये
वो
बात
आपको बिल्कुल भी मोटा नहीं करेंगे।
नहीं करेंगे।
ज्यादातर फल और सब्जियां, इसमें एक दो इस्तेमाल है, मिसाल के तौर पर एक फल है आज तक मुझे ईरान में तो नजर नहीं आया, इसको अंग्रेजी में एवोकाडो कहते हैं।
जी बिल्कुल, वो अंग्रेजी में, मुझे भी अंग्रेजी में ही पता है क्योंकि वो पाकिस्तान में भी मुझे नहीं नजर आया और हिंदुस्तान में भी देखने में नहीं मिलता।
जी वो काफी महंगा फल भी है और ज्यादातर ये यूरोपियन कंट्री से आता है और उसके अंदर फैट कॉन्टेंट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन वो फैट्स जो है वो असल में आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे फैट्स हैं, क्योंकि हम फैट्स को भी दो किस्मों में डिवाइड करते हैं।
ठीक है, हाँ, कुछ जगहों पे हमारे बदन में भी वैसे भी हमें जो है चर्बी की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चर्बी को सिफर जो कर दिया जाए, पर ठीक। जी डॉक्टर,
और जो दूसरी बात आ गई जैतून की और ड्राई फ्रूट्स बादाम की, ड्राई फ्रूट्स ऑलमोस्ट जितने भी हैं सब के अंदर फैट कुछ ना कुछ पाए जाते हैं, रेशो जो है वो थोड़ा डिफर करती है,
क्योंकि एक खास तेल हर ये जो ड्राई फ्रूट्स है इनका एक तेल जो है निकलता ही है, बादाम का तेल होता है, सारी चीजों का। जी
इनके अंदर जो है वो एक स्पेसिफिक किस्म के फैट्स पाए जाते हैं जिसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, और ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे
हैं। सही,
ये
है।
एक आम फैट होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए एक खास मिकदार तक अच्छे हैं, उससे बढ़ना शुरू हो जाए तो नुकसानदेह हैं।
ठीक है,
ये ऐसे फैट्स हैं कि जितना आप इसको ज्यादा बढ़ाते जाए उतना आपके लिए
बेहतर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज जो है चर्बी के बारे में कही जाती है वो ये है कि कहा जाता है कुछ चर्बियां जो हैं वो खून के अंदर घूमती फिरती रहती हैं और कुछ चर्बियां जो हैं वो कहीं पर जाके जो है अकुमुलेट हो जाती हैं, कहीं पर जमा हो जाती हैं, कहीं बैठ जाती हैं, इनके बारे में जो कहते हैं कि जो खून में घूमती फिरती रहती हैं, कहते हैं ये बहुत खतरनाक होती हैं?
नहीं, खून में जो घूमती फिरती रहती हैं वो खतरनाक नहीं होती।
ठीक है,
वो उनके घूमने फिरने की वजह ही असल में ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मौजू है।
जी जी,
लेकिन जो खून में जाकर जम जाती हैं
सही,
वो जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, मिसाल के तौर पर एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरीज का जो है वो सख्त हो जाना और उसके जवाब में ब्लड प्रेशर का जो है वो इंक्रीज होना या हार्ट डिजीजेस का क्रिएट होना, वो सब उन चर्बियों की वजह से होता है जो वहां पर जाकर उन ब्लड वेसल्स में अटैच हो जाती हैं, क्योंकि वो खून के जो नॉर्मल फ्लो होता है, जो एक लैमिनर फ्लो है, उसको डिस्टर्ब करती हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मुझे जो है यहाँ से इतनी बातें की जा रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे और एक और जो है खाने पीने, क्योंकि आज का दिन जो है हमारा खाने पीने का दिन होता है तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। जी तो नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए और इस खूबसूरत सी तस्वीर के साथ हाजिर हुए हैं हम लोग, लेकिन अब जो है तस्वीरें जो है हम आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की खिदमत में जो है उनको तब्दील करना शुरू कर देंगे। आज जो है बड़ी मजे मजे की तस्वीरें फ्रूटों सब्जियों की मैं लेके आया हूँ। जी कहा जाता है कि जो शुगर मौजूद होती है फलों के अंदर, जी बिल्कुल शुगर जो है वो मौजूद है फलों के अंदर, बिल्कुल ऐसी ही बात है, और इसमें यह भी कहा जाता है लेकिन सिर्फ उसकी जो टाइप है वो उसको कहा जाता है फ्रुक्टोज। सही कह रहा डॉक्टर साहब, फ्रुक्टोज जो है वो जो कार्बोहाइड्रेट जो है जो हमारे फलों में मौजूद होती है उसकी जो किस्म है उसको कहा जाता है फ्रुक्टोज। और साथ साथ ये भी बताता चलूं कि फल जो है हमारे पास जो सब्जियां हैं उनके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास जो है ये ही हो कि जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च वगैरह जो है उसमें मौजूद है, हमारे पास उसमें वाइटामिन भी हैं, हमारे पास उसमें फाइबर्स भी हैं और जो है मुख्तलिफ चीजें होती हैं उसके अंदर। एक जो चीज बहुत अहम होती है जिसको हम कहते हैं सेलुलोज, जो सब्जियों में फ्रूटों में जो पाई जाती है और ये जो है एक फाइबर का काम देती है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी फाइबर जो है अगर जो आप लोग खासतौर पे जो लोग ये चाहते हैं कि वो उनका निज़ाम इनज़ाम जो है वो ठीक चलता रहे तो वो ज़रूर जो है फाइबर का इस्तेमाल करते रहें। कुछ लोगों को कब्ज़ वगैरह हो जाती है, उसके लिए भी फाइबर बहुत अच्छी होती है, और उसके अलावा कहते हैं कि मोटापे को रोकने के लिए भी जो है फाइबर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है।
जी जी जी, ब्लड प्रेशर के लिए भी फाइबर का इस्तेमाल बहुत अच्छा है।
अच्छा, ब्लड प्रेशर के लिए भी जो है इन्होंने कहा है कि फाइबर का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। ये डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे
हैं? न्यूट्रिशन साइंसेज में अगर किसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है तो वो डाइट्री फाइबर्स ही हैं।
सही है
जी
जी, ठीक है
जी, सही
बात। चलते हैं यहाँ पर जो है आप लोगों के पास, आप लोग जो है प्रोग्राम को आगे चलाएं।
मैं जो है यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो गया है हमारा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह इस मौजू को हम आगे भी बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए जी, हमारा वक्त खत्म हो
गया। बिल्कुल खत्म हो गया, आपको पता चल गया वक्त खत्म हो गया। बहरहाल चलते हैं जो है आगे, छोटा सा वक्फा लेंगे हम लोग और उसके बाद प्रोग्राम को आगे चलाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़िम, खुश आमदीद आपको कहता हूं मैं प्रोग्राम में दोबारा, और खूबसूरत सी मौसीकी आप लोगों ने सुनी, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। मैं इस तरफ आ जाता हूं और अभी कुछ देर में एक अगला और जो सरप्राइज है हमारे पास, क्या था हमारे पास सरप्राइज?
सरप्राइज है, ये बताना है, ऐलान करना है?
जी
जी,
कर दें।
हम चलेंगे,
सरप्राइज तैयार है।
जी 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 नाज़रीन, हम चलेंगे दिल्ली स्टूडियो, अतिया निषाद साहिबा हमारे साथ होंगी और हमारे पिछले हफ्ते का मौजू चला हम मोटापे के बारे में, कैसे दूर करें, क्यों दूर करना चाहिए, कितना जरूरी है, हम इस बारे में बात अच्छा। करेंगे
तो ये जो है आप खुश हो गई आप?
जी मैंने बता दिया
कि मैंने डॉक्टर साहब का ऐलान कर दिया था। चलते हैं, ठीक है डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। हिंदुस्तान सलाम अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में।
वालेकुम सलाम,
बहुत बहुत खुश आमदीद आपको कहता हूँ प्रोग्राम में। और जी आप सवाल कुछ पूछ?
जी मैं भी आपके खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ और बहुत बहुत खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में अतिया साहिबा।
वालेकुम
अस्सलाम। जी जी अतिया साहिबा, अक्सर देखा गया है कि हमारे वो पिछले हफ्ते का पहले मौजूद में पता चलूँ, फिर से इसको आगे हम बढ़ा रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग जो है मोटापा दूर करने के लिए नाश्ते को छोड़ देते हैं, तो ये किस हद तक दुरुस्त है?
जी ये बहुत ही आम देखने में आया है कि लोग जो भी मोटे होते हैं उनको लगता है कि अगर मैं सुबह का नाश्ता छोड़ दूं तो मेरा वजन गालिबन घट जाएगा
जी।
और ऐसा होता भी है, जैसे आप अगर एक आध महीने सुबह का नाश्ता छोड़ दें और खूब जॉगिंग वगैरह करें तो आपको महसूस भी होगा कि आप पतले हो रहे हैं, लेकिन ये हमेशा तो हो नहीं सकता। जैसे ही आप वापस नाश्ता लेना शुरू करेंगे आपका वजन दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगा।
अच्छा।
क्योंकि नाश्ते की अहमियत यहाँ पे ऐसी है कि इसको ब्रेकफास्ट कहते हैं, यानी रात भर के रोजे को तोड़ना
वो
इसलिए जरूरी है कि ये हमारे जिस्म के बीएमआर को बढ़ाता है। बीएमआर जिसका जिक्र मैंने पिछले हफ्ते भी किया था, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, अगर बीएमआर कुदरती तौर पे डाउन है, कम है, तो आप कितनी भी वर्जिश करें, कितना भी आप नाश्ता छोड़ें या खाना छोड़ें, आपका वजन उस लिहाज से घटेगा नहीं जिस लिहाज से घटना चाहिए। वहीं अगर आप मोटे हैं और सुबह चाहे हल्का फुल्का ही नाश्ता करें, जाहिर है ज्यादा भारी नाश्ता ना करें, और फिर उसके बाद अपने रूटीन को फॉलो करें प्रॉपर और ठीक से मुनासिब गजा को लें और सुबह थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करें, वर्जिश करें, तो बहुत अच्छे से आपका वजन घट सकता है। तो ये बिल्कुल ही एक गलत फहमी है लोगों के बीच में कि नाश्ता छोड़ने से वजन घटता है, बल्कि ऐसा है कि नाश्ता करने से वजन घटता है।
अच्छा अच्छा साहब, ये बात आपने अच्छी बताई कि नहीं छोड़ने से और ना छोड़ने से फर्क तो आपने बता दिया। यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगी सुबह के नाश्ते का हमारे मोटापे से क्या ताल्लुक है?
देखिए ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, इसके लिए थोड़ा सा हमें ये समझने की जरूरत है, जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं, अपने जिस्म की निज़ाम जिस तरीके से हमारा बना हुआ है। हमारा जिस्म का निज़ाम ऐसा है कि हम खाने को तभी हजम करेंगे जब हम खाएंगे। ये नेचुरली ऐसा है कि जैसे हम रोजा रखते हैं तो हमारा जो हाजमा है, हमारा जो फिजियोलॉजी है जिस्म की, वो अपने आप धीमी हो जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर हमने सारा दिन कुछ नहीं खाया तो उसी रफ्तार से हमारा हाजमा चल रहा है, उसको हम कहते हैं कि बीएमआर डाउन हो गया, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी जिस रफ्तार से हमारा खाना हजम हो रहा है उसकी रफ्तार कम हो गई। तो जब हम सुबह का नाश्ता नहीं करते, रात भर भी हमने कुछ नहीं खाया है, हमने सुबह का नाश्ता भी छोड़ दिया, तो हमने उस बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए कुछ किया ही नहीं, और हमने अपने यानी मोटापे को भी घटाने के लिए कुछ भी नहीं किया। वहीं अगर हम सुबह हम थोड़ा बहुत भी नाश्ता कर लें, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप नाश्ते में पूड़ी कचौड़ी और खूब रोगन वाली चीजें खाएं, अगर जैसे कॉर्नफ्लेक्स हो गया या सूखी चपाती के साथ कोई सब्जी खा ली, तो हम अपने बीएमआर को एकदम से बढ़ाते हैं। बाज लोग तो बाज न्यूट्रिशनिस्ट तो सुबह सुबह बिल्कुल उठ के ऐसे फल खाने को कहते हैं, जैसे सेब हो गया जिसमें नेगेटिव कैलोरीज होती है, यानी उसको हजम करने में ज्यादा कैलोरीज सर्फ होंगी जितने की उसको खाने से मिलेंगी, तो उससे भी एकदम से मोटापे में फर्क पड़ता है। और जो लोग नाश्ता छोड़ते हैं, अब आप ये बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने बीएमआर के लिए कुछ भी नहीं किया, और जाहिर सी बात है कि सारे दिन में जब तक वो लंच टाइम होगा वो आराम से उनके जिस्म का फैट बढ़ते जाता है और उसको जिसमें एक्यूमुलेट करते जाते हैं।
सही। अच्छा, एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो इस तरह के मोटापे से शिकार लोग हैं, उनको किस किस्म के नाश्ते करने चाहिए?
हाँ, ये बहुत जरूरी मोटापे के लोग के शिकार लोग हैं, उनको ये चीज समझ में आए कि उनको नाश्ता किस चीज का करना चाहिए। अक्सर ये देखने को मिला है कि जो लोग मोटे होते हैं वो कहते हैं कि भाई मैं सुबह ही खा लेता हूँ और सारा दिन नहीं खाता हूँ क्योंकि मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है।
सही।
ये बिल्कुल उल्टा असर करता है, उनका वजन इससे और भी बढ़ता है। जो जितने भी वजन से परेशान लोग हैं उनको ये चाहिए कि सुबह का नाश्ता तो वो जरूर करें लेकिन उसमें तवाजन पैदा करें, यानी उसमें अभी जैसे पहले भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि फाइबर बहुत जरूरी है और मोटापे को घटाने के लिए भी फाइबर, डाइटरी फाइबर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो हम ऐसी चीज लें जैसे ओट मील। आजकल बाजार में फ्लेवर्ड ओट मील भी आता है, जैसे मसाला ओट वगैरह बोलते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन चीज है मोटापे को कम करने के लिए। उसके अलावा जो हमारा बिल्कुल ट्रेडिशनल खाना है जैसे सब्जी हो गई, रोटी हो गई, रोटी भी उसमें जिसमें चोकर मिला हुआ हो जिसको हम फाइबर कहते हैं ब्रान, उसकी रोटी के साथ हम सूखी सादी सब्जी खाएं, या अगर सब्जी नहीं खाना चाहते तो दही रोटी बहुत अच्छा नाश्ता है। अच्छा, मोटापे के लिए एक खास बात यह है कि उन्हें कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन को बैलेंस करने यानी तवाजन प्रोटीन में पैदा करना बहुत जरूरी है। और जितने भी मोटे लोग हैं उन्हें प्रोटीन को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, मतलब बांटना बहुत जरूरी है। आधा हिस्सा उनको चाहिए कि वो प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन हो, यानी पेड़ पौधों से निकली हुई प्रोटीन हो, जैसे कि उन्होंने दाल का चीला बना लिया या उन्होंने बादाम खा लिया इस तरीके से, और आधा एनिमल प्रोटीन यानी नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन जिसे हम गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, यानी अच्छा प्रोटीन जिसमें अमाइनो एसिड्स के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हो, उसके लिए दूध और अंडा। तो अगर इस तरीके से मोटे लोग इस चीजों में तवाजन पैदा करके सारी चीजें यानी कार्बोहाइड्रेट भी खाएं, प्रोटीन भी दोनों तरीके का खाएं, तो इंशाल्लाह ताला उनके वेट में, उनके वजन में तो घटाने में बहुत ही ज्यादा मुफीद साबित होगा। और एक खास बात, मोटे लोगों को नाश्ते में फल हरगिज नहीं लेना चाहिए। बहुत बड़ी मिस्टेक है, गलती है जो लोग करते हैं कि नाश्ते में फल को मिला लेते हैं। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि फल में एक खास तरीके का शुगर मौजूद होता है, फ्रक्टोज कहते हैं, उससे वजन को बढ़ने में बहुत तेजी से मदद मिलती है। फल जरूर खाएं लेकिन नाश्ते से एक घंटे की दूरी खाएं।
अच्छा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वक्त हमारे पास महदूद है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी आपसे जो है इस मौजू पे गुफ्तगू जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, हमारे नाजरीन के लिए वक्त निकाला।
बहुत शुक्रिया
जी। रुबाब, जैसे कि आपको पता है कि ईरान में जो है अबू रेहान बेरूनी का दिन मनाया जा रहा है, तो उस सिलसिले में हमने उसको जो है देखते हुए सिनेचर के दिन शब्बर साहब को दावत दी है, और शब्बर साहब बड़े एक दिलचस्प और बड़े अहम मौजू पे हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे, तर्ज जिंदगी में हमारी मीरास का क्या असर है, और मीरास में ये जो बुजुर्ग शख्सियात हैं, जो अजीम शख्सियात हैं, इनके लिहाज से भी जो है बात की जाएगी, और जो है उनका क्या हमारी जिंदगियों पे असर है, क्या असर होना चाहिए, और आया क्या हम असर लेते हैं भी हैं ये नहीं लेते, इस पे जो है शबर साहब हमारे साथ बात करेंगे। शबर साहब बहरहाल जाने पहचाने हमारे माहिर हैं, इंशाल्लाह जो है
खुर्रम आपने यहाँ तो सनीचर का बता दिया, ठीक है, अब मैं नाज़रीन को अगले हफ्ते का पूरा जो मौजू चलने वाला है मैं वो बताती हूँ। आदाब और मुआशरत क्या है, हमें किस तरह उस पर अमल करना चाहिए, क्या आया हम अमल करते हैं अपने आदाब मुआशरत पे, कितनी अच्छा, जरूरी है हमारी जिंदगी में।
आदाब मुआशरत वाला मौजू है ना, ये जब तक आप नाजरीन हमारे साथ जो है नहीं होंगे प्रोग्राम में,
मजा
तो
नहीं
प्रोग्राम को हम वाकई अगला हफ्ता जो है बड़ा मसला हो जाएगा अगर आप लोग ईमेल नहीं करेंगे। मैंने जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल फेसबुक जो है यहाँ पर रख ली है, और जो है आदाब माशरत जो है हमारा मौजू है, ये आप जहन में रख लें, आदाब माशरत पे जो है हमारा हमारी जो है यहाँ पर बात होगी।
एक बहुत जरूरी जो है मौजू है नाज़रीन, बहुत जरूरी मौजू जो आहिस्ता आहिस्ता गुम होता चला जा रहा है, कहीं इसके रंग फीके पड़ते चले जा रहे हैं हमारी जिंदगी में। आपकी नजरात क्या है, अब तो खुर्रम भाई यहाँ पे आपसे लाइव यानी आपको जवाब दे सकते हैं, तो जरूर 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 हमें बताइएगा कि आपके नजरात क्या है इस बारे में।
ईमेल एड्रेस जो है आप नीचे देख सकते हैं, मैसेज रिकॉर्डर का जो नंबर है वो भी नीचे लिखा हुआ है, और उसके अलावा जो है आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे ये जो हमारे जो फेसबुक है उस पर सबसे आसान तरीका जो है मेरे ख्याल में हमारे नाजरीन के लिए फेसबुक की है या यूट्यूब होगा, तो उसके जरिए जो है आप हमें कमेंट दें, हमें बताएं आपका क्या ख्याल है इस ये जो हमने मौजू जो है इंतखाब किया इसके बारे में।
जी हमारा मेरे ख्याल से टाइम खत्म होने वाला है फौरन भाई, मैं अपने नाजरीन के लिए यही दुआ करती चलूंगी कि नाजरीन आज का दिन आपका बहुत बहुत अच्छा गुजरे, हर कदम आपका रिस्क हलाल की तरफ बढ़े। मुझे और खुर्रम भाई को इजाजत दीजिए,
अल्लाह हाफिज़।